श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, आपको मेरा मसीह नमस्कार मिले। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से सही सलामत ही होंगे। मित्रों, आज हमारे लिए फिर से एक सौभाग्य है कि हम जीवित परमेश्वर के वचनों में से सीखें। पिछले अध्ययन में हमने लय व्यवस्था 17 अध्याय के इन विषयों पर विचार किया था: बलिदान का एक स्थान, बकरे की पूजा का अपराध, मेल मिलाप के तंबू के द्वार पर बलिदान चढ़ाना, लहू न खाने पर नैतिक बंधन, इन विषयों को हमने देखा था। प्रिय मित्र, आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके अध्याय 18 पर विचार करेंगे। इस अध्ययन का शीर्षक है अनैतिकता की निंदा करना, सातवीं आज्ञा को बढ़ाना। प्रिय मित्र, अब तक हमने देखा कि ये विधियां शुद्धिकरण की रीतियों के लिए दिए गए थे। ये विधियां धर्म के रीति रिवाज को संचालित करती थी, जो 18, 19, 20 अध्याय में हम एक विशेष भाग में पाते हैं, जो 10 आज्ञाओं को हमारे जीवन की परिस्थितियों में लागू करती हैं। अब परमेश्वर अपने लोगों के नैतिक जीवन के पहलू के बारे में बात कर रहा है। प्रिय मित्र, अब हम नैतिक व्यवहारिक जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह भाग अध्याय 18 उसके 1-5 पद में एक प्रस्तावना के साथ खुलता है और अध्याय 20 के अंत में एक औपचारिक लिखित वचन के साथ बंद होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें परमेश्वर का अपने लोगों के सामाजिक जीवन में कई प्रतिबंध और नियम देने का कारण बताते हैं। प्रिय मित्र, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें नैतिक बुनियादों को तोड़ा गया है और उन्हें हटाया गया है। कौन नियमों को बनाता है और क्या सही है और क्या गलत है? संदेहवादी यह व्यंग करते हुए पूछते हैं, यह भूमिका और लिपिबद्ध वचन हमें दोहरा अर्थ बताता है। पहला, भूमिका में 2, 4, 5 पद में 3 बार वचन कहता है, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर नियमों को बनाता है। 10 आज्ञाओं को तोड़ना गलत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यह गलत है। दूसरी बात पाते हैं, लिपिबद्ध वचन दूसरा कारण देता है। आइए हम लय व्यवस्था 20 उसके 26 पद को पढ़ें। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। मित्रों, परमेश्वर की मांग है कि उसके लोग पवित्र बने। जीवन की हर परिस्थितियों में पवित्रता परमेश्वर की आज्ञा है। यह अध्याय मुख्यतः सातवीं आज्ञा के संबंध में बताता है। व्यभिचार क्या है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता है। लैंगिक पाप या यौन संबंधी पाप की इसका विषय है। ये सभी पाप हैं जो समाज को नाश करते हैं और साम्राज्यों के गिरने और पतन का भी कारण है। इस अध्याय का अध्ययन हम इन विषय पर करेंगे: सामाजिक मनाही के लिए प्रस्तावना, संबंधियों के साथ सहवास की मनाही, विविध पाप की मनाही, अपने बच्चों को मोलेक देवता के लिए बलिदान चढ़ाने की मनाही, विकृत सहवास की मनाही और इन पापों के कारण फलिस्तीन निवासियों का बाहर निकाला जाना आदि विषयों की हम चर्चा करेंगे। प्रिय मित्र, आइए हम प्रथम विषय सामाजिक मनाही की भूमिका अध्ययन करें। लय व्यवस्था 18 अध्याय उसके 1-5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है: फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों की विधियों का पालन करना और चलना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों का निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। मित्रों, अभी अभी परमेश्वर के लोग मिस्र देश से बाहर निकले थे और वहां उन्होंने ये काम किए थे जो वर्जित थे। ये घृणित पाप जिनका हम आगे वर्णन करेंगे मिस्रियों के जीवन शैली में थी। पापमय वातावरण के प्रभाव से परमेश्वर अपने लोगों को अलग करना चाहता था। वे कनान देश जा रहे थे जहां दूध और मधु की धारा बहती थी। लेकिन हाँ, कनान में इतना ही नहीं था, वहां कनानी भी थे, वे लोग भी अधर्मी थे। परमेश्वर ने देखा कि इसराइल के संतान फंसे हुए हैं, जैसे हम कहेंगे शैतान और गहरे नील समुन्दर के बीच, चट्टान और कठिन जगह के बीच में। मिस्री उनके पीछे थी और कनानी उनके आगे थे, और ये दोनों ही बहुत भयंकर और दुष्ट थे। प्रिय मित्र, हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जिसमें योना 4 क्रांति की चर्चा करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने लय व्यवस्था 18 अध्याय को पढ़ा है कि नहीं। क्या मैं आपसे कहूं कि यह कोई नई बात बिल्कुल नहीं है? यह वही पुरानी अनैतिकता है जो मिस्र और कनान में थी। परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। नियमों को कौन बनाता है? परमेश्वर नियमों को बनाता है। कोई कह सकता है मैं उन्हें नहीं मानता। खैर, यह आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर नियमों को बनाता है। 10 आज्ञाओं को तोड़ना गलत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यह गलत है। परमेश्वर की संतानों के लिए यही पर्याप्त है। संदेहवादी इसे संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं अपने लिए नियम बनाता है और वह स्वयं ही अपना ईश्वर है। जी हाँ, अगर आप विश्व की सृष्टि कर सकते हैं तो आपको कुछ तारे और चांद और सूर्य के 7 संपूर्ण ग्रह संबंधी एक पद्धति की जरूरत होगी, तो आप अपने 10 आज्ञाओं को बना सकते हैं। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के बनाए संसार में रहते हैं, उसकी हवा का सांस लेते हैं, उसके धूप का उपयोग करते हैं, उसका पानी पीते हैं, उसकी धरती पर चलते हैं और उसके लिए किराया भी नहीं देते हैं, आपके लिए यही अच्छा होगा कि उनकी आज्ञाओं को मानें। वह हमें कहता है, अगर हम उनकी आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो उसके लिए हमें कीमत चुकानी होगी। मेरे भाई, आपको अवश्य ही चुकानी होगी। हो सकता है स्थानीय पुलिस आपको गिरफ्तार ना करे, लेकिन एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने जो कुछ भी उन दिनों में अनैतिक ठहराया, वे आज भी अनैतिक हैं। आइए हम नए नियम से सुने, 1 थिस्सलुनीका की पत्री 4 अध्याय उसके 5-7 पद में लिखा है, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों की नाए जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17-19 में हम देखते हैं, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताय देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 11 में मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहला कर व्यभिचारे या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियंकर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। 2 पत्रस 1:4 में हम पाते हैं, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मित्रों, नए नियम के पत्रियों से ये अनुच्छेद आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। किसी भी युग में परमेश्वर की संतानों को पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया गया है। 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पद में, इफिसियों 1:4 पद में तथा 1 पत्रस 1:16 में ऐसे ही लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है और हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हैं, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रिय मित्र, परमेश्वर हमें पवित्रता के लिए बुला रहा है। हमें पवित्रता पर जोर देने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे पवित्र होने के लिए कहते हैं। प्रिय मित्र, एक और दूसरी सच्चाई है जिससे हम नहीं चाहते कि आप वंचित रहें। बहुत लोग कहते हैं कि भीड़ को यीशु के पास लाने के लिए आपको वहां जाना है और उनके बीच रहना है, आपको उनके जैसा होना है। व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से इसका प्रयास किया गया है। और क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? वे उन्हें सुसमाचार नहीं बता पाए, बल्कि वे स्वयं भीड़ के सदस्य हो गए। क्या मैं आपसे कहूं, परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है और वास्तव में वे लोगों को यीशु के पास लाए हैं जिन्होंने अपने जीवन में सुसमाचार के अनुसार जीवन जिया। उदाहरण के लिए 18वीं सदी में इंग्लैंड बहुत दुष्ट जगह थी। वे जॉन वेस्ली के अनुयायियों को पवित्र लोग कहते थे। वास्तव में उन्होंने उन्हें मेथोडिस्ट का नाम दिया क्योंकि उनके तरीके संसार के तरीके से भिन्न थी। प्रिय मित्र, परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा ईश्वर हूँ। कोई कह सकता है मैं तो मसीही नहीं हूँ और मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। क्या मैं आपसे कहूँ, परमेश्वर अपनी सर्वशक्ति संपन्नता की घोषणा करता है। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और वही इसे चलाता है और वह कहता है मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। वह मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। वह हमें जानता है, फिर भी वह हमसे प्रेम करता है। प्रिय मित्र, अगर आपने परमेश्वर से मेल मिलाप किया है तो आप उसे प्रसन्न करना चाहेंगे। परमेश्वर की संतान पवित्र आत्मा से भर सकती है ताकि वह देह के इन पापों को न करके आत्मा का फल उत्पन्न कर सके। आइए अब हम दूसरे विषय के निकट जाएं, निकट संबंधियों के साथ सहवास की मनाही। लय व्यवस्था की पुस्तक 18 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तुम में से कोई अपने किसी निकट कुटुम्बिन का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए, मैं यहोवा हूँ। मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी अपने निकट संबंधी से शारीरिक संबंध या संभोग न बनाए। यह संपूर्ण भाग 7वीं आज्ञा को आगे बढ़ाता है। जिनमें खून का रिश्ता है उनके बीच शारीरिक संबंध की मनाही है। अब यह आगे कहता है परमेश्वर बहुत स्पष्ट है और वह कारण भी देता है, मैं ईश्वर हूँ। लय व्यवस्था 18 उसके 7 और 8 पद में लिखा है, अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना, वह तुम्हारी माता है इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का ही तन है। मित्रों, यहाँ पर हम और देखते हैं कि यहाँ असहनीय पाप निकट संबंधियों के साथ सहवास के विरुद्ध एक चेतावनी है। फिर भी यह पाप कुरिन्थियों के कलीसिया में था। पौलुस ने बहुत कठोर शब्दों में इसकी निंदा की है। 1 कुरिन्थियों 5:1 पद में हम पाते हैं, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। मित्रों, इन्हीं पापों के बारे में लोग आज चर्चा करते हैं, है या नहीं? परमेश्वर भी इनके बारे में बताते हैं। मुझे मत कहिए कि आज ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि पाप क्या है। मित्रों, परमेश्वर इसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते। लय व्यवस्था 18 उसके 9-15 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती व अपनी नतनी का तन न उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुम्बिन है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुम्बिन है। और अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। मित्रों, इस भाग में खून या विवाह द्वारा स्थापित विभिन्न संबंधों को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। घरेलू परिस्थिति में संबंधी एक दूसरे के साथ रहते हैं जहां व्यभिचार के पाप की संभावना हो सकती है। परमेश्वर ने इसे रोकने के लिए इन विधियों को दिया। मिस्री ये पाप करते थे, विशेष करके जो 9 पद में है, फिरौन और टोलेमिस भाई और बहन के बीच विवाह करवाते थे। शुरू में इसके विरोध में कोई नियम नहीं था। कैन और सेत को अपनी बहन के साथ विवाह करना पड़ा। अब्राहम ने अपनी आधी बहन से विवाह किया, हालांकि नियम ने इस प्रथा का विराम लगा दिया। लय व्यवस्था 18 उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई की तन है। इस पद के लिए अपवाद है और वह है व्यवस्था विवरण 25 उसके 5-10 पद में वर्णित, रिश्तेदारों को छुड़ाने के लिए संतान उत्पत्ति की व्याख्या है। प्रिय मित्र, अब हम तीसरे विषय पर आते हैं, विविध पाप की मनाही। लय व्यवस्था 18 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा हुआ है, किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उघाड़ना और उसकी पोती को व उसकी नतिनी को अपनी स्त्री करके उसका तन ना उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबिन है, ऐसा करना महापाप है, और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न बनाना कि पहले के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। यह संबंध खून के द्वारा नहीं परंतु विवाह के द्वारा है। पत्नी के बेटों या बेटी के साथ निकट संबंध के कारण कोई भी विवाह वर्जित है। स्पष्ट है कि दोनों पदों में एक ही समय में दो पत्नियों का जिक्र है। यह दो विवाह नहीं बल्कि निकट संबंधी से सहवास के समान माना गया है। बारकेले के शब्दों में इन दो पद 17 और 18 पर ध्यान दे, औरत और उसकी बेटी के तन को एक साथ न उघाड़ना, न तो उसके भाई की बेटी या उसकी बेटी की बेटी का तन उघाड़ना, क्योंकि उनमें लहू का रिश्ता है। यह निकट संबंधी सहवास है। अपनी पत्नी के जीते जी उसकी बहन का तन न उघाड़ना। दो बहनें लियाह और राहेल के साथ विवाह करने से बेचारे याकूब को समस्या का सामना करना पड़ा। निश्चित रूप से इस परिवार की कहानी आनंदमय नहीं थी। हालांकि याद रखें कि याकूब 10 आज्ञाओं के आने से पहले रहता था। लय व्यवस्था 18 अध्याय के 19 पद में लिखा है, फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। मित्रों, पति पत्नी के वैध वैवाहिक संबंध को भी किसी विशेष समय पर वर्जित किया गया है। शारीरिक इच्छाओं को भी परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन करना था। लय व्यवस्था 18 उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना। प्रिय मित्रों, मेरा यकीन करें, परमेश्वर इस्राएली परिवार को उनके चारों ओर अन्य जातियों के दुराचारी व्यवहार से प्रभावित होने से बचाने के लिए रुकावटें ला रहे थे। स्वर्ग के परिवार को प्रतिबिंबित करना ही इस संसार के परिवार का काम है। इफिसियों 3 अध्याय उसके 15 पद में हम इसे पाते हैं। पवित्रता का जीवन परमेश्वर के परिवार की पहचान है। आराधना करने के लिए मेल मिलाप वाले तंबू में एक पवित्र स्थान था। इसराइली राष्ट्रों को जीवित रहने के लिए परिवार में एक पवित्र स्थान में रहना था। नए नियम में इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। अच्छा होगा कि इस संबंध में आप पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय पढ़ लें। प्रिय मित्र, आइए अब हम चौथे विषय पर बढ़ते हैं, अपने बच्चे को मोलेक देवता के आगे चढ़ाने पर वर्जित। लय व्यवस्था 18 अध्याय उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र करना, मैं यहोवा हूँ। तुम्हारा बीज का अर्थ है उनकी संतान। यह पद इस अध्याय से बाहर लग सकता है, लेकिन अन्य जाति मोलेक देवता की आराधना लैंगिक बातों से जुड़ी हुई है। पुराने मोलेक की मूर्ति को लाल होने तक गर्म किया जाता था और बच्चों के शरीर को उसके बाहों में रखा जाता था। इसकी भयावह हमारी कल्पना से भी बाहर है। ऐसे लोग भी हैं जो विश्वास करते हैं कि ऐसी बातें कभी नहीं होती थी। हालांकि धर्मशास्त्र में इस बुराई के बारे में लिखा हुआ है। आइए हम इसे पढ़ें, दूसरा राजा 17 अध्याय उसके 31 पद, यर्मिया 7 के 31 पद में लिखा है, और अबियो ने निभज और तरता को स्थापित किया और सपवमी लोग अपने बेटों को अद्रमेलेक और अनमेलेक नाम सपवैम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे, और उन्होंने हिन्नोम वासियों की तराई में तोपेद नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। मित्रों, यह भयानक प्रथा परमेश्वर के पवित्र नाम का अनादर करती है। लय व्यवस्था 20 उसके 3 में भी हम इसे पाते हैं। अन्य जातियों के इस अस्वाभाविक क्रूर प्रथा से सच्चे परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया गया था। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बच्चों से परमेश्वर का प्रेम जग जाहिर है। प्रभु यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास आने दो। अब आइए हम पांचवें विषय पर जाते हैं, विकृत शरीर सहवास की मनाही। लय व्यवस्था 18 अध्याय उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। मित्रों, यह विश्वास करना कठिन है कि एक शहर में एक कलीसिया के विकृत सहवास करने वालों के लिए नाच गान का आयोजन किया। मुझे बताया गया कि उसमें 700 लोग शामिल हैं। यह इतना घृणित प्रदर्शन था कि एक अखबार प्रतिनिधि जो उसके संबंध में लिखने के लिए गया था ठहर न सका और तुरंत वहां से निकल गया। फिर भी एक कलीसिया इसमें संलिप्त थी। प्रिय मित्र, परमेश्वर इसकी निंदा करता है और पुराने नियम में उसने इसकी निंदा की है, नए नियम में भी वह इसकी निंदा करता है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 24 से 28 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। नैतिक पतन जो यहाँ वर्णित है, आज वह आम बात है। आज महान राष्ट्र सदोम और अमोरा के समान हो गए हैं। इस देश की दशा को देखकर रोना आता है। मित्रों, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, यह मेरी जन्मभूमि है। मैं इन गंदे लुच्छे और अनैतिक लोगों को देखने से घृणा करता हूँ जो हमें परमेश्वर के न्यायसन के समक्ष खड़ा कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र, मेरा यकीन करें, आज परमेश्वर का न्याय ऐसे देशों के लिए आ चुका है। वे न विदेश में शांति और न देश में शांति रख सकते हैं। क्यों? परमेश्वर कहता है दुष्ट के लिए कोई शांति नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक 48 अध्याय उसके 20 से 22 पद में हम पाते हैं, और लय व्यवस्था की पुस्तक 18 उसके 23 में हम आगे पढ़ते हैं, किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संकुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। यकीनन यह अकथनीय है। जनन क्षमता के विषय में भक्तगण गलत धारणा रखते हैं और प्रकृति की पूजा करने वाले में यह प्रथा प्रचलित है। स्वेच्छाचारिता हमेशा ही समाज को घृणित रूप से भ्रष्ट कर रही है। प्रिय मित्र, अगर आप सोचते हैं कि यह बुरी प्रथा आज नहीं है, तो आप अपने शहर के पुलिस विभाग से इसका पता लगाएं, वे आपको बताएंगे। मित्रों, आइए अब हम अंतिम विषय, फलिस्तीन में रहने वालों का इनके पापों के कारण निकाला जाना पर विचार करें। लय व्यवस्था 18 उसके 24 और 25 पद में लिखा है, ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देती है। मित्रों, घिनौने और अति दुष्ट पाप के कारण ही फलिस्तीन में रहने वालों को निकाला गया था। बहुत से नरम दिल और नरम दिमाग वाले प्रचारक आंसू बहाते हैं कि क्यों परमेश्वर ने कनानियों को बाहर किया। उन्हें बाहर निकालने का कारण यही था, जो कुछ भी देश में हो रहा था वह सब परमेश्वर के लिए असहनीय था। कनानियों का देश स्त्री संसर्ग से उत्पन्न रोग से पीड़ित था। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें यरीहो शहर से सोने के एक टुकड़े लेने या अशुद्ध कपड़ा छूने तक से क्यों मना किया था? क्योंकि वे हर काल्पनिक शर्मनाक पापों के दोषी थे। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने अच्छे कारणों से ही उन्हें बाहर कर दिया था? आखिर किरायादार किराया नहीं देता है तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रिय मित्र, वह देश परमेश्वर का था, परमेश्वर उसका अधिकारी अर्थात मालिक था। इसी तरह मैं और आप इस धरती पर रहते हैं। हमारा 70 वर्ष सिर्फ एक लीज या पट्टा है। इस धरती का मालिक परमेश्वर है और वही उसे चलाता है। अच्छा होगा कि हम उसके कामों में उसका साथ दें। उसी का काम है जो अंत तक बना रहेगा। लय व्यवस्था 18 उसके 26 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करें वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाएं। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर न चलना और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रिय मित्र, परमेश्वर अपने लोगों को दोहरी चेतावनी देता है कि अगर वे वही जीवन शैली अपनाएंगे जो उनसे पहले वहां लोगों ने अपनाई थी तो वह आपको अवश्य नाश करेंगे, अर्थात वही न्याय उन पर भी किया जाएगा। परमेश्वर का देश पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य है कि धरती धार्मिकता से ढाकी जाए। प्रिय मित्र, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित परमेश्वर के कई नियमों के बारे आज आपने सुना है। मेरा विश्वास करें कि परमेश्वर ने ये नियम इसलिए नहीं दिए कि आप बंधन में घुट घुट कर जिए, वरन उसने इसलिए दिए कि आप पक्षी उन्मुख गगन के समान सच्ची शांति और पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता का जीवन जिए। प्रभु यीशु ने कहा वह इसलिए इस जगत में आया कि आप भरपूरी का जीवन पाएं। प्रिय मित्र, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, इसलिए हम अपने अध्ययन पर यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस अध्ययन से अवश्य आशीष प्राप्त किए हैं और अगले अध्ययन तक अपना ख्याल रखेंगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आपकी चिंता करते हैं और वे चाहते हैं कि आप पवित्र जीवन जिए। प्रभु आप सबको आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरी सलीब की ओर हमेशा तकता रहूं, यसु तकता रहूं। तेरी सलीब की ओर हमेशा तकता रहूं, यसु तकता रहूं। तेरे करम से तेरी शिवा पे ढलता रहूं, यसु ढलता रहूं। तेरी सलीब की ओर हमेशा तेरे मसा में डूबा रहूं, तू ही नजर आए मुझ में। तेरे मसा में डूबा रहूं, तू ही नजर आए मुझ में। तेरे प्यार की बन के शमा में जलता रहूं, यसु जलता रहूं।